آیت 48 سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت والی کتاب عطا فرمائی. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ دیکھیے کس سوچ پہ پارے کا رب ہو رہا ہے، آیت 50 پہ، آیت 50 پہ دیکھیے، الحمدللہ رب ہو گیا. بولیے شعور سے، الحمدللہ کی علی نعمت القرآن، قرآن کی نعمت پہ اللہ کا شکر کیجیے. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، بہت انجوائے کریں گے. اس کے بعد انبیاء کرام کے ایک سے ایک قصے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ دیکھیے پہلے دلوں میں ذرا سی دراڑیں ڈالیے بتوں کے خلاف، پھر کوئی بت توڑے گا اور پھینکے گا. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آج بھی ہمارے کلچر میں 80% رسم و رواج دین کے یا دنیا کے نام پہ کوئی کرے اور کوئی اللہ والا پوچھ لے یہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. نہیں، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جواب سن لیجئے. سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے. میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے. حضرت ابراہیم نے ان کو وارننگ دے دی. اب کیا ہوا؟ فجعلہم جزازاً، بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خاص صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں. کہنے لگے مرے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے، ابراہیم نام رکھنا کتنا آسان ہے. آج کتنے ابراہیم ہیں؟ میرا لحاظ ہر فیملی میں ایک ابراہیم ہے. کیا بت توڑنے والا ابراہیم ہے، یا بت خرید کے لا کے بچوں کو دینے والا ابراہیم ہے؟ ناموں کی لاج رکھنی چاہیے، اس لیے جب بچوں کے نام اچھے اچھے رکھے نا، تو پھر ساتھ ان کو میسج بھی دیں کہ آپ نے کام بھی اچھے کرنے ہیں. کیا ہوا یہ سارا کچھ کر کے؟ آگے دیکھیے قصہ، اب یہ بت ٹوٹ رہے ہیں. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں. کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں. بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی تم ہی ظالم ہو. لکھیے ہدایت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں جاگی، سمجھ آ گئی کہ غلط ہے، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، یعنی عقل ماری گئی، انا آ گئے آ گئے. کئی باتیں بندے کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ پھر بندہ پلٹ جاتا ہے اسی چیز پہ جس میں شروع سے ہوتا ہے. اور کہنے لگے یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں. کتنی بے بسی ہے اس جملے میں، کیا بت تھوڑی بولتے ہیں، پتھر کی مورتیاں کہاں بولیں گی. اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے فرما دیا. اب ذرا خوبصورت سا انداز دیکھیے، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما وسلام علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا. دیکھ لیجئے، جہاں کوئی قربانی اس کے بعد اعزاز. جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ان یوزل طریقوں سے کرتا ہے. माँ फोकल फितरत तरीकों से मदद होती है, एम पॉसिबल पॉसिबल बनता है। हमारा इस वक्त ये दौरे कुरान कई लोगों को एक अजीब सी सोच दे रहा है। मुझसे भी पूछते हैं एक दो लाड में, तो मैंने एक जुमला लिखा कुरान की आयत, बल फालुल लिमा युरीद वैज़ा इरादा शय नहीं यकूल लहू कुन फयकून। फिर लोग नाम लेते, फलां को नहीं मिली, फलां को नहीं, फलां को नहीं इजाज़त मिली। भाई आप इस पे क्यों अपना दिमाग लगाते हैं? आप इस पे क्यों नहीं लगा लेते कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी क्यों हुई? इसलिए कि इब्राहिम ने उनको अल्लाह की दावत दी। पिछली आयतें पढ़ लें 66। जो सच्चे दिल से लोगों को रब से जोड़ेगा ना, उसके सारे काम अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है। बंदे अपने काम करें या दूसरों से कराते फिरें, और जो कह देगा कि अल्लाह मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरे काम करूंगा तू मेरे कर, इस दर्जे पे पहुंच जाइए कि फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई, और ठंडी भी नहीं, सलामती। अब ये टेम्परेचर इससे ज्यादा करूं तो आपको सर्दी लगने लग जाएगी। अच्छा लगता है नॉर्मल टेम्परेचर का, इतनी ठंडी ना हो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए, बस माइल्ड कर दो, ठंडी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उनको नाकाम बना दिया। ये दुआ करें अल्लाह ना हमारा बुरा चाहे। बंदे कहते हैं तो कहते रहे, करते हैं तो करते रहे, सोचते हैं तो सोचते रहे, बोलते हैं तो बोलते रहे, हैं कैसे? क्या औकात है किसी बंदे की? और फिर आगे क्या हुआ आग से निकलने के बाद? वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दि अल्लती बारकना फीहा। और हम इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम को बचाकर इस जमीन की तरफ ले चले जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी, और हमने उसे इसहाक अता फरमाई और याकूब। इस पर मजीद नोट करिए, बेटे के सब पोता मिल गया। अल्लाह हक नहीं रखता, बंदा रब की दर बड़े रब ना दे, बंदा तो किसी को दे कुछ तो वो उसको उससे बढ़ा कर दे, तो अल्लाह को आप कुछ दें तो अल्लाह ना दे। बंदों के पास क्या है, 50 के ऊपर 10 भी लगाएंगे तो 60 दे देंगे, आपने 50 दिया कोई 100 दे देगा। अल्लाह इतने जीरो लगाता है कि आप गिन नहीं सकते। इंसान अकेला होता है। हज़रत इब्राहिम ने जब इस जमीन पे पुकार लगाई थी ना तौहीद की, तो अकेले थे, गैर अजीज हरिन। मैंने रास्ते में भी जब वो पहाड़ देखे तो मैंने उस पर ये कमेंट लिखकर अपने ग्रुप में भेजा कि अरब के संगलाख पहाड़, गैर अजीज हरिन। इधर अपने बीवी बच्चे को छोड़ना कोई आसान काम था? बातें तो हम बड़ी करते हैं, जरा सी 19-20 हो जाए फिर कोई हमारा रोना धोना तो देखे। तो अल्लाह कहते हैं हमने उनको फिर बेटा भी दिया और पोता भी दिया, और हर एक को हमने सवाले भी बना दिया। अल्लाह हमारे बेटों पोतों नवासों और उनके बहन भाइयों के सबके बच्चों को भी नेक और सवाले बना दे। और हमने इन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे हुक्म से लोगों की राहबरी करें, और हमने इनकी तरफ नेक कामों के करने और नमाजों के कायम रखने और ज़कात देने की वही यानी तलकीन की, और वो सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। ये है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये मिल रहा है अंबिया कराम को तमगा हुस्ने कारकर्दगी। अल्लाह के रास्ते में निकले, आजमाइशें भी आईं, कौमों ने सताया भी, मजाक भी उड़ाए गए, लेकिन अल्लाह ने फिर उसके बदले भी दिए। आइए जरा तदब्बुर और अमल के पॉइंट नोट करते हैं। आयत 48 से, किसी ऐसे शख्स का हक अदा कीजिए जिसके माल या इज्जत में आपने ज्यादती की हो, और यकीन कीजिए ये नफ़े का सौदा होगा अगर ज़िंदगी में आप उसका हक अदा कर दें। उसकी कमी बेशी जो आपकी तरफ से हुई उसको पीछे कर दीजिए, वरना क़यामत के दिन और ख़ास तौर पे फिर कंतरा के मुकाम पे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्रॉस मैचिंग होगी वहाँ जाकर। फिर आगे लिखिए, कुरान और सुन्नत में बयान करदा बहस और मुबाहसे पर गौर करके इसका तरीका सीखिए, यानी अच्छे तरीके से बात करें। कुरान और सुन्नत अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, आपकी मेरी खूबसूरती और तर्ज़े बयान का कोई उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सामने बंदे होते हैं, तो बंदों को जब अल्लाह का किताब दे ना तो सलीके से दीजिए, ढंग से दीजिए, अदब और रिस्पेक्ट से दीजिए। इससे पता चलता है कि सुनने वालों या शागिर्दों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, टॉन्टिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए बात करने वाले का। किसी नेक काम के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह ताला आपको तकलीफ से निजात देगा इंशाअल्लाह ताला। रहनुमाई के नुक्ते, किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है, हत्ता कि वो इसकी कोई बुराई ना देख सकता है और ना सुन सकता है। इस दर्जे पे भी नहीं किसी से मोहब्बत करनी। दुनिया में आने वाली मुसीबतें नसीहत हैं जो अल्लाह के अजाब से खबरदार करती हैं। मैं एक और जुमला लिखे, मुसीबत इंसान का उस्ताद बन जाती है, शर्त क्या है कि उससे सबक लिया जाए। हम ना मुसीबतों से सबक लेते और ना हम नेमतों से सबक लेते। हिदायत इंसान की अक्ल या मर्तबे की वजह से नहीं मिलती, ये अल्लाह ताला का एहसान है। गौर व फिक्र की बात है, मुत्तकी हकीकत में इल्म और अमल से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। कुरान करीम को बाबरकत कहा गया क्योंकि बरकत खैर व भलाई की कसरत का नाम है। काफिर किताबुल्लाह से बहरा होता है, ना तो इसे सुनता है ना इससे फ़ायदा उठाता है। जब बंदा अपने अल्लाह के साथ सच्चा होता है तो अल्लाह ताला उसे उम्मीद से ज़्यादा नवाजता है। दो दफ़ा लिख लें बेशक इस जुमले को, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसहाक मांगे और बगैर दुआ के याकूब भी मिल गए। आप अक्सर औलाद ही मांगते हैं ना, यही कहते हैं ना, अल्लाह बेटा दे दे, बेटी दे दे, जिनके बच्चे हैं या नहीं। आपने कभी ये कहा अल्लाह पोता दे दे? पहले बेटा आएगा ना। तो इब्राहिम ने बेटा मांगा, अल्लाह ने पोता भी दे दिया। चलिए आगे देखिए आयत 74 से, वलूत अनातैना हु हुक्म व इल्मा, हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी हुक्म और इल्म दिया और उसे इस बस्ती से निजात दी जहाँ के लोग गंदे कामों में मुबतला थे। आज के दौर का ब्लैक टाउन, और वो क्या है, होमोसेक्सुअलिटी, हम जिंस परस्ती था तो ये शुरू से, पर इस तरह से लीगलाइज करके इज्जत दे के ऑनरेबल इसको मुकाम नहीं मिला था। छुपके करते थे लोग, अब अपना नाम बताते हुए आए फुला, अल्लाह हिदायत दे दे। अक्ल मारी जाए तो इंसान सीधी चीज को उल्टा और उल्टी को सीधा कहने लगता है। और थे भी वो बदतरीन गुनाहगार, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, बेशक वो नेक लोगों में से थे। इसके बाद व नूहन इस्नादा मिन कब्ल, नूह अलैहिस्सलाम के इस वक्त को याद कीजिए जबकि इसने इससे पहले दुआ की, हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और इसे और इसके घर वालों को बड़े कर्ब से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों को झुटला रहे थे इनके मुकाबले में हमने इसकी मदद की, यकीनन वो बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को डुबो दिया। क्या कर्ब था नूह अलैहिस्सलाम को, शिर्क वाले माहौल में किसी अहले तौहीद का रहना कर्ब से कम नहीं है। न जाने लोग कैसे खुश रह लेते हैं गलत चीज़ों के बीच में। नहीं, हम क्या कहें, बुरी बात नहीं, जो भी हर एक को तो पता है। नहीं, इसे अमल का नुक्ता भी सही लिख लीजिए कि जितनी आपके इर्द गिर्द बुराई और गंदगी हो, आप उतने तकलीफ में हो, परेशान हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आगे देखिए, व दाऊद व सुलेमान, और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर गई थीं और इनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने इनका सही फैसला सुलेमान को सुझा दिया या समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने हुक्म और इल्म दे रखा था, और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे जो तस्बीह करते थे, और परिंदे भी हम करने वाले ही थे। हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई की जरर से तुम्हारा बचाव हो। फहलन तुम शाकिरून, क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे? यानी जब अल्लाह अनयूजल नेमते दे तो शुक्र भी अनयूजल होना चाहिए। वली सुलेमान अर्रीहा आसिफा, हमने तुंदो तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जिसके फरमान से इस जमीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना हैं। इसी तरह से बहुत से शयातीन भी हमने इसके ताबे किए थे जो इसके फरमान से गोते लगाते थे और इनके सवा भी बहुत से काम करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, इनके निगेबान हम ही थे। आपने देखा कि सुलेमान और दाऊद बाप बेटा दोनों को अल्लाह ने दीन की भी दौलत दी और दुनिया की भी दौलत दी। ये है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। लेकिन दोनों की एक कॉमन चीज नोट कीजिए कि उनको माल और इन सारी चीजों ने बहकाया नहीं। पैसे के साथ जो खराबियां आ जाती हैं ये उससे पाकते हैं, और ये सच है कि पैसा दीन वाले के पास आता है तो नेमत बन जाता है। और पैसा बेदीन को मिल जाए तो वही होता है जो नौ दौलतियों और लखलोट किस्म के लोगों का होता है। वो खुद ही अपने खिलाफ हुज्जत बनाता है। दीनदार अपने माल को अपने हक में हुज्जत बनाता है। अच्छा क्या करना है, इसको ज़ाया ना करें, चले इसको उधर डाल दें, ज़ाया नहीं करता वो चीज़ों को, पैसे का सोच समझ के इस्तेमाल करता है। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क, आप दो की जगह तीन ले लें, एक किसी को सदका कर दें, आप क्यों इतने पैसे को ज़ाया करते हैं। यानी पैसा खर्च करते हुए 10 वक्त का सोचना चाहिए। और इसके बरक्स दुनियादार वो ऐसे सोचते इट्स फाइन। तो ये अम्बिया किराम के किस्से हमें ये सारी बातें भी सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम, बहुत कम तذکرہ इनका, अल्लाह मेरे मामू अय्यूब की भी बख्शिश कर दे। पहले मामू जो हमने खोए, और हम खुद भी छोटे ही थे उस वक़्त, वो मामू थे अय्यूब उनका नाम था, छोटे छोटे दो बच्चे छोड़ के दुनिया से चले गए अल्लाह के हुक्म से। तो जब भी ये आयत पढ़ती हूँ, और वो बीमारी में भी गए, और फिर जो उनका सब्र था ना, वाकई सब्र अय्यूब सच है। आइए देखें हजरत अय्यूब के साथ क्या हुआ। वायूब इसनादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद कीजिए, जबकि इसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो हमने इसकी सुन ली, और जो इनको दुख था उसे दूर कर दिया, और इनको अहले इय्याल अता फरमाए, बल्कि इनके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबबे नसीहत हो। और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़ल अलैहिमुस्सलाम, ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब नेक लोग थे। अब आप देखिए आगे कौन है। वज़न्नूनी ज़हब मुगादिबा, मछली वाले यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया क्या मुझे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम। तो हमने इनकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की है, अम्बिया कराम की दुआओं में ये नहीं कहा गया ये दे दे। आप देखिए ना, अभी चूंकि पढ़ा है तो आपके सामने ही है, देख लें। हजरत अय्यूब ने क्या कहा, अन्नी मसनी अदुर हमराइमिन, एक एक लफ्ज़ को देख लें, बेशक मुझे ज़रर लगा है और तू रहम वाला है, कुछ भी नहीं कहा। हम होते क्या कहते, अल्लाह पसली में दर्द है वो ठीक कर दे, अल्लाह कान में दर्द है, अल्लाह सर में दर्द है, अल्लाह वो अंदर की हड्डी पे दर्द है, अल्लाह बड़ी सर में दर्द है ठीक कर दे। हमारे यहाँ दुआएं करना तो ये होता है ना। अच्छा चलिए अगली, तो आपको ज़ुबानी ही याद है, आयत करीमे में हज़रत यूनुस ने क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। कुछ नहीं मांगा, पहले अल्लाह की बड़ाई, वहदानियत, तौहीद, फिर उसको पाक करार दिया, फिर अपने आप को जालिम करार दिया। तीन चीज़ें हैं इसमें, क्यों लिखिए, सिर्फ मिसाल से बात समझाती हूँ। किसी बहुत अमीर शख्स के पास कोई गरीब शख्स आए और सिर्फ ये बोल दे मैं बहुत भूखा हूँ, तो क्या अमीर शख्स समझ नहीं जाता, फौरन कहेगा इसको रोटी दे दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। क्या हुआ, उस शख्स ने अपनी हालत बयान की, मांगा कुछ नहीं, ये नहीं कहा मैं बहुत भूखा हूं मुझे रोटी दे दो। तो दुनिया में कोई सिर्फ आपकी हालत जानकर देखे कि आपको भूख लगी हुई है, खाने ऑफर कर दे, तो सोचिए अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, ना बंदों की, ना बंदों के छोटों की बड़ों की। लेकिन अल्लाह ताला के सामने बंदा जब अपनी हालत रख देता है ना, उसमें असर ज्यादा होता है। वैसे भी देखिए जो लफ्ज़ कम होते हैं ना, उसकी तासीर ज्यादा है। इसकी मिसाल सूरत बकरा में आपको दे चुकी हूँ, गुफराना का रब्बना, ये नहीं कहे गफेर लाना, अल्लाह में बख्श दे, गुफराना का तेरी बख्शिश। किसी को पानी मांगना है, प्यास लगी है, कहता है पानी ला दो, जरा ग्लास भी निकाल लेना, फ्रिज में से ये भी करना, बर्फ भी डालना, तासीर ही कम हो जाएगी। और एकदम आपके गले में जरा सी खराश है, पानी पानी, अगला फौरन उठ के भागेगा कि इसको पानी की जरूरत है। तो क्या पता चला, अम्बिया कराम ने लफ्जों से नहीं मांगा, अपनी हालत बयान की। अल्लाह हमें भी ऐसी मांगने वाला बना दे। अब सवाल लिखिए, कि अल्लाह सुबहान तआला से मांगने वालों ने जो जो मांगा, और आप देखिए 17 नबियों की 17 हाजात हैं। तो इसे पता चलता है कि इंसान को कभी एक चीज़ की ज़रूरत होती है कभी दूसरी की, या फिर किसी एक इंसान को एक चीज़ की ज़रूरत है कभी दूसरे की। आप वो चीज़ मांग रहे हैं जो बहुत लोग मांगते हैं, और वो है औलाद। और वो कौन है? ज़करिया अलैहिस्सलाम। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम वअंत ख़ैरुल वारिसीन। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब इसने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तनहा ना छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है। फ़स्तजबना लहू वहबना लहू यहया। हमने उसकी दुआ कबूल फरमा कर उसे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए और इनकी बीवी को इनके लिए दुरुस्त कर दिया। यानी अल्लाह ने अपने कलमा कुन से बीवी का इलाज कर दिया, यानी बीवी ठीक हो गई। यह बड़ी प्यारी बात है इस बारे के साथ, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। और इसकी मिसाल हम 17 पैगंबरों की दुआओं में देख रहे हैं और देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। बुढ़ापे की औलाद कोई आम बात है? हर एक को नहीं मिलती, पर ख़ास लोगों को मिल गई, और वो हज़रत ज़करिया और उनकी बीवी थी। अब वजह क्या थी? अब इसको तो आप 3 दफ़ा लिखिएगा और मुसहफ़ पे हाईलाइट कर लीजिए। क्यों हुआ? इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात। पहला ही खूबी, ये नेक कामों की तरफ भाग दौड़ करते थे। दूसरी बात, वयदउना रगबन व रहबन, ये डर और खौफ के साथ हमको पुकारते थे। और तीसरी बात, व कानू लना खाशेईन, और हमारे सामने आजजी करने वाले थे। ये 3 काम कीजिए, औलादें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, सारा रिस्क मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। आजजी नहीं होती, बाकी काम तो लोग कर ही लेते हैं, भाग दौड़ भी बड़ी होती है और अल्लाह से दुआएं भी बड़ी करते हैं। आजजी नहीं होती, ज़रा सी नेकी करके हम अकड़ने लगते हैं, इल्ला माशाल्लाह। चलिए तदब्बुर करते हैं आयत 74 से ऑनवर्ड। किसी मुसीबत ज़दा की मदद करें, अल्लाह की राह में सदका दें, और अल्लाह की रज़ा के लिए नफली रोज़े रखें। कर लेंगे इतने काम इकट्ठे। आपने बच्चों को अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाइए और इनकी नसीहतों की वजाहत कीजिए। गुनाहों के बाद कोई मुसीबत आए तो दुआ करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हमेशा अपने गुनाहों का एहसास रखिए। कुरान पाक से रहनुमाई, किसी कौम में बुराइयों का बहुत ज़्यादा हो जाना इसकी हलाकत और तबाही का पेश खेमा है। जब आप हर तरफ से तकलीफ़ों में घिर जाएं, तो अय्यूब, यूसुफ और बाकी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के किस्सों पे गौर कीजिए। ये सब आपके लिए मेरे लिए रोल मॉडल हैं। सब्र का मुकाम बहुत ऊंचा है, इसी तरह शुक्र का भी। बस ये कि सब्र तकलीफ़ पर होता है और शुक्र नेमत के मिलने पे होता है, यानी ये एक ही चीज़ के दो रुख हैं। सीसॉ है ना, ऊपर नीचे, आप ऊपर तो दूसरा नीचे। तो शुक्र क्या? ऊपर होना। और सब्र क्या है? कि आप नीचे हैं। दोनों हालों में सब्र कीजिए। गौर व फिक्र, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि कोई इंसान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। ऐसे लोगों की कदर कीजिए जो आपको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास 2 नेकियों यानी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, क्योंकि इन दोनों इबादात को बाकी तमाम इबादात पर फजीलत हासिल है। दिलों की अच्छाई हर वक़्त अल्लाह की तरफ रजू करने से हासिल होती है। नेक हम नशीन अपने साथी के लिए भी बाबरकत होता है। अल्लाह हमें अपने साथियों के लिए बरकतों वाला बना दे। आगे देखते हैं आयत नंबर 91 से ऑनवर्ड। अब एक औरत की कहानी, वल्लती अहसनत फरजहा। और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और खुद इन्हें और इनके बेटे को तमाम जहान के लिए निशानी बना दिया। कौन? मरियम और इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है, और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फ़िरका बंदियाँ कर लीं, सब के सब हमारे ही तरफ लौटने वाले हैं। फ़मैया अमल मिनस्सालिहाति वहुवा मोमिन। फिर जो भी नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो तो इसकी कोशिश की बेकदरी नहीं की जाएगी। हम तो इसके लिखने वाले हैं और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे। लिख ले, कोई रूहें वापस नहीं आती, ना जुमेरातों को आती, ना 11वीं पे आती, ना 12वीं पे आती, ना चेहलम पे आती, ना बरसियों पे आती। ये आयत दलील है इस बात की कि जो दुनिया से चला गया अब वो क़यामत के बाद ही वापस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। कब? हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इस वक्त कुफार की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिल वाक़े हम कसूरवार थे। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो सब दोजख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोजख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में दाखिल ना होते और सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। वो वहाँ चिल्ला रहे होंगे, इमेजिन कीजिए, और वहाँ कुछ भी ना सुन सकेंगे, यानी कान बड़ी आवाज़ ना सुनाई देगी। अलबत्ता बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी वो सब जहन्नुम से दूर ही रखे जाएंगे, वो तो दोजख की आहट तक न सुनेंगे और अपनी मन भाती चीज़ों में हमेशा रहने वाले होंगे। वो बड़ी घबराहट भी इन्हें गमगीन न कर सकेगी और फरिश्ते इन्हें हाथों हाथ लेंगे। हाईलाइट कीजिए, एक नई नवेली दुल्हन का तस्वर आता है इन आयतों के साथ। वतलक्काहुमुल मलाइका, हाथों हाथ कैसे लेना होता है? तलक्की का लफ्ज़ पड़ा पीछे, वही लफ्ज़ है ये, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और साथ ही क्या कहेंगे फरिश्ते? हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तूअदून। फरिश्ते ने हाथों हाथ लेंगे और कहेंगे कि यही तुम्हारा दिन है वो जिसका तुम वादा दिए जाते रहे। कहते हैं ना, इट्स योर डे टुडे। किसी बच्चे की कोई कामयाबी हो ना तो आप कहते हैं आज आपका दिन है। बोले आज आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? जन्नती सारी जिंदगी मेहनत करेगा और वहां हमेशा की खैर पाएगा। तो एक जम लिखे, ये दुनिया काम की जगह, वो दुनिया आराम की जगह। और इधर भी अगर आराम फरमा रहे हैं तो उधर फिर पता नहीं क्या हालात होंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में बामकसद कामों में लगा दे। अब आगे कियामत का कुछ मंजर। यौम नतवि समा, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तुम्हार में और आग लपेट दिए जाते। वो पहले दौर में स्क्रॉल्स होते थे ना, ऐसे गोल गोल घुमाते थे, उसकी तरफ इशारा है। जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर ही करके रहेंगे। वाला कद कतब नाफिज जबूर, हम जबूर में पिंदो नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। इबादत गुजार बंदों के लिए तो इसमें एक बड़ा पैगाम है। और हमने आपको तमाम जान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कह दीजिए मेरे पास तो बस वही ही की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही है, फिर क्या तुम सरे इताअत झुकाते हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है। मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर। अलबत्त अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानता है और जो कुछ तुम छुपाते हो इसे भी जानता है। हाईलाइट कीजिए इस आयत को, पमारसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। जरूर से दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन। मुझे इस काबिल नहीं, मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्रर वक्त तक का फ़ायदा पहुँचाना हो। खुद नबी ने कहा, ऐ रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है इन बातों पर जो तुम बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निस्फ हुआ आयत 112 पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया। आइए देखते हैं इसमें अमल के क्या नुक्ते हैं, तदब्बुर भी करेंगे। कब्रिस्तान की ज़्यारत किया कीजिए ताकि आप आखिरत से गाफिल ना होने पाए। अल्लाह से दुआ करें कि आप इन लोगों में शामिल हों जिनके हक में खैर का फैसला हो चुका है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस्लाम और नेक मुसलमानों को दुनिया में गलबा अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए सबसे अहम बुनियाद خالص توحید ہے، یہ ہے قرآن سے رہنمائی۔ پاک دامنی، حیا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پر پورے خلوص سے عمل کیجئے، اس کے احکام کی حفاظت کیجئے اور اس کے معنی جانیے، اور اس کے لیے آپ کو بھی سے نیت کرنی ہے کہ رمضان کے بعد ہم نے ترجمے سے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کرنا ہے۔ غور و فکر کی بات ہے، جب تک امت ایک امت بنی رہتی ہے سب توحید پر جمے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن دل دہلا دینے والے زلزلوں سے کفار اپنے جرائم کو جان لیں گے۔ قیامت کے دن سب لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرما کر ساری دنیا پر رحم فرمایا تو وہ تھے رحمت للعالمین۔ کیا خوبصورت مضمون پہ سورت پوری ہوئی۔ آئیے ذرا یہاں رحمت للعالمین کے حسن اخلاق کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ بولیے اللہم صلی علی محمد، ہمارے نبی، پیارے نبی۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں اچک لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیرت اور اخلاق میں اعلیٰ اور اکمل تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، خصوصاً ضعیفوں، کمزوروں اور غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک بے حد عمدہ تھا، کیونکہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ساری زندگی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے یہ خدام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اب تمہارا ان کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے، فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس۔ اب اتنا تو اردو میں سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہو وہ اسے بھی کھلائے، اور جیسا خود پہنے ویسا ہی انہیں پہنائے۔ یہ بخاری کی روایت 30 اور مسلم 1661 تھی۔ اگر ہم دور جاہلیت کے غلاموں کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے غلاموں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ عربوں کے اگر کوئی غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا تو اسے مولا کہتے تھے، مولا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا عیب تصور کیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ کی رحمت، کیا آپ نے غلاموں کو حقوق عطا فرمائے، اور آپ نے کیا فرمایا، بلا تکلفوہم ما یغلبہم فعین کلفتموہم ما یغلبہم فعینوہم، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ لیکن اگر تم اپنے نوکروں یا غلاموں کو اس طرح کا مشقت والا کام کہہ دو تو پھر اس کے پورا کرنے میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ بخاری کی روایت 30 اور مسلم 1661۔ آج آپ اور میں اس پہ کیا کریں؟ اپنی میٹس کو، خدمت گار خواتین ہیں، ان کا تھوڑا سا کام کر دیں، اور خاص طور پہ رمضان میں روزے سے ہوں تو ان سے ہلکا کام لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غلاموں کو اس سے زیادہ شرف کیا دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کیا، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا نکاح خاندان قریش کی ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس ان سے کر دیا۔ یعنی آپ نے یہ ڈسکریمنیشن ختم کر دی کہ یہ خاندان غلامہ ہے اور یہ فلاں ہے، اور جہاں غلاموں سے کام زیادہ لینے سے روکا جا رہا ہے، ان کو مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو بتائیے اس سے زیادہ پھر خیر کس کے لیے آپ کے دل میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو مارے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ لوگ اس لیے بھی نہیں مارتے تھے کہ آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1057۔ اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ بہت سارے پیارے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا تو اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی جیسے اخلاق دے۔ کبھی اپنی میٹس کے ساتھ سختی نہ کریں۔ باہر کے ملکوں میں تو کوئی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، उनको तो आते कहेंगे हेल्प योर सेल्फ, चाय पी लीजिए, वे ड्रिंक ले लीजिए, और इंग्लिश बोलनी पड़े तो कुछ और भी ज़्यादा नायते होती हैं। और हमारे हुए साथियों में इल्ला माशाल्लाह, आती पहले उसकी धुलाई होती है, देर से क्यों आई हो, ये काम नहीं किया पहली शिकायत। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अगर अपनी जगह दूसरे को और दूसरे की जगह खुद को कर लें, तो क्या हम अपने लिए वो चीज़ें पसंद करें जो दूसरों के लिए करते हैं।